लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पापा जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस का उपदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 4 अगस्त को संत पापा जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा की और याद किया कि वे किस तरह मुस्कान के माध्यम से प्रभु की अच्छाई को प्रकट करते थे। उन्होंने सभी लोगों को प्रोत्साहन दिया कि हम भी प्रभु के समान असीम प्रेम करना सीखें तथा प्रशंसित, शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले कलीसिया बने जो कभी द्वार बंद नहीं करती।
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.
संत पापा फ्रांसिस ने संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में समारोही क्रिस्डाग अर्पित करते हुए संत पापा जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा की। क्रिस्डाग समारोह के दौरान उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, यीशु यरूशलेम की अपनी यात्रा पर हैं और आज का सुसमाचार बतलाता है कि एक विशाल जनसमूह उनके साथ चल रही थी। संत पापा ने कहा, यीशु के साथ चलने का अर्थ है उनका अनुसरण करना, उनका शिष्य बनना। फिर भी उन लोगों के लिए यीशु का संदेश आकर्षक नहीं था, क्योंकि यह एक बड़ी मांग करने वाला था। यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहन और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बाहर न रखे, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यीशु भीड़ से क्यों ऐसा कहते हैं? इन नसीहतों का क्या अर्थ है? आइए हम इन सवालों का उत्तर खोजने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ यीशु का अनुसरण करती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग उनके वचनों से प्रभावित थे, उनके कार्यों से आश्चर्यचकित थे और उन्हें भविष्य के लिए आशा के स्रोत के रूप में देखते थे। ऐसे समय जब कोई शिक्षक या दक्ष नेता अपने प्रभावशाली शब्दों के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित होता हुआ और खुद की बढ़ती लोकप्रियता को देखता तो क्या करता? संत पापा ने कहा कि आज भी यही होता है। व्यक्तिगत या सामाजिक संकट के समय में हम गुस्सा महसूस करते अथवा उन लोगों से डरते हैं जो हमारे भविष्य को खतरे में डालते हैं। हम अधिक संवेदनशील हो जाते और हमारी भावनाओं के बढ़ने के साथ हम उन लोगों को देखते हैं जो परिस्थिति का लाभ उठाते, समाज के भय से फायदा मारते और एक ऐसे मुक्तिदाता होने का दावा करते हैं जो हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है, जबकि वास्तव में वे व्यापक समर्थन और अधिक शक्ति की तलाश में हैं। संत पापा ने कहा, सुसमाचार के अनुसार यह यीशु का रास्ता नहीं है, ईश्वर का तरीका अलग है, क्योंकि वे हमारी आवश्यकता का लाभ नहीं उठाते अथवा हमारी कमजोरी का प्रयोग अपनी उन्नति के लिए नहीं करते। वे हमें कपटपूर्ण वादों के साथ बहकाना या सस्ते उपहार बांटना नहीं चाहते। उन्हें भारी भीड़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे संख्या से अधिक उत्साहित नहीं होते। वे सहमति की खोज भी नहीं करते, ना ही अपनी व्यक्तिगत सफलता को देवता मानते हैं। इसके विपरीत वे चिंतित होते हैं जब लोग अस्थिर उत्तेजना और उत्साह से उनका अनुसरण करते। परिणामतः लोकप्रियता के आकर्षण के आगे झुकने के बजाय वे प्रत्येक व्यक्ति से उनका अनुसरण करने के अपने कारण और इससे होने वाले परिणामों को ध्यान से समझने के लिए कहते हैं। उस भीड़ में कई लोगों ने यीशु का अनुसरण इस आशा से किया होगा कि वे भविष्य के नेता बनेंगे जो उन्हें उनके शत्रुओं से मुक्त करेंगे। यदि वे सत्ता प्राप्त करेंगे तो उस शक्ति को उनके साथ साझा कर सकेंगे अथवा चंगाई कार्य के द्वारा भूख और बीमारी दूर करेंगे। हम भी प्रभु का अनुसरण इसी तरह कई कारणों से कर सकते हैं। इनमें से कुछ को स्वीकार किया जा सकता है कि वे दुनियावी हैं। एक पूर्ण बाहरी धार्मिकता वाला व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की खोज, एक निश्चित सामाजिक स्थिति की चाह या चीजों को नियंत्रण में रखने की इच्छा, शक्ति और विशेषाधिकार की प्यास, पहचान की इच्छा आदि को छिपाने का काम करता है। यहाँ तक कि वह इन सब के लिए ईश्वर का शोषण करने लगता है। संत पापा ने कहा, परंतु यह ईश्वर का तरीका नहीं है, अतः उनके शिष्यों और उनकी कलीसिया का भी तरीका नहीं हो सकता। प्रभु हमसे दूसरे मनोभाव की मांग करते हैं। उनका अनुसरण करने का अर्थ उनके विजयी जुलूस में भाग लेना नहीं है अथवा जीवन भर के लिए जीवन बीमा प्राप्त कर लेना।
Al contrario, significa anche portare la croce.
दूसरी ओर इसका अर्थ है अपना क्रूस उठाना, अपना और दूसरों का बोझ ढोना, अपने जीवन को एक उफार बनाना, उनकी उदारता एवं हमारे लिए उनकी करुणा में प्रेम का अनुसरण करते हुए अपने आप को दूसरों के लिए उदारता पूर्वक खर्च करना। ये ऐसे निर्णय हैं जो हमारे जीवन की समग्रता को संलग्न करते। यही कारण है कि यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि वे इस प्रेम से बढ़कर किसी दूसरी चीज की कामना न करें। संत पापा ने कहा, इसके लिए हमें अपने आप से ज्यादा उन्हें देखना है, प्रेम करने सीखना है और इसे क्रूसित यीशु से सीखना है। उनमें हम देखते हैं कि वे बेअंत और सीमा रहित प्यार करते। संत पापा जॉन पॉल के शब्दों में, हम ईश्वर की ओर से अमर प्रेम के पात्र हैं। एक अमर प्रेम अपने जीवन के क्षितिज पर कभी नहीं डूबता बल्कि लगातार जलता और घोर अंधेरी रात में भी चमकता रहता है। जब हम क्रूसित यीशु को देखते हैं तब हम उस प्रेम की चोटी पर बुलाए जाते ताकि ईश्वर के प्रति हमारी विकृत विचारधारा को शुद्ध किया जा सके और हमारा आत्म अवशोषण तथा कलीसिया एवं समाज में ईश्वर और कलीसिया यहाँ तक कि शत्रुओं को भी प्यार करना संभव हो सके। त्याग, मौन, गलतफहमी, एकाकी, प्रतिरोध और उत्पीड़न की कीमत पर, क्योंकि संत पापा जॉन पॉल कहते हैं, यदि आप क्रूसित यीशु को चुंबन देना चाहते हैं तो आपको क्रूस पर झुकना पड़ेगा और प्रभु के सिर पर रखे मुकुट के दो चार कांटों की चुभन सहने पड़ेंगे। यह एक ऐसा प्रेम है जो अंत तक बना रहता, जो चीजों को अधूरा नहीं छोड़ता और कठिनाइयों से नहीं भागता। यदि हम ऊंचा लक्ष्य रखने में असफल होते, जोखिम नहीं उठा सकते, सत्य ही विश्वास से संतुष्ट रहते, तब हम जैसा कि यीशु कहते हैं उन लोगों के समान हैं जो मकान बनाना चाहते हैं लेकिन उसके खर्च का हिसाब नहीं करते। वे नींव डालते हैं लेकिन काम पूरा नहीं कर सकते। अपने आप को खो देने के डर से हम उदार होना बंद कर देते हैं। हम अपने संबंधों, कामों, जिम्मेदारियों, प्रतिबद्धताओं, अपने सपनों और विश्वास को अधूरा छोड़ देते हैं। इस तरह हम अपना जीवन अधूरा अर्पित करते, कोई निर्णायक कदम नहीं उठाते, संघर्ष नहीं करते, अच्छाई के लिए जोखिम नहीं उठाते और दूसरों की सचमुच मदद करने में अपने आप को अर्पित नहीं कर सकते। यीशु कहते हैं, सुसमाचार को जियो और तुम अपना जीवन जियोगे आधा नहीं बल्कि पूरा, बिना समझौता किए। संत पापा ने धन्य संत पापा जॉन पॉल प्रथम की याद करते हुए कहा, हमारे नए धन्य ने इसी तरह जीवन व्यतीत किया, समझौता किए बिना सुसमाचार के आनंद को जिया और अंत तक प्रेम किया। उन्होंने शिष्यों की निर्धनता को अपनाया जो न केवल भौतिक वस्तुओं से विरक्ति है बल्कि अपने आप को केंद्र में रखने और अपने लिए महिमा की खोज करने के प्रलोभन पर विजय पाना भी है। दूसरी ओर वे यीशु के उदाहरणों पर चले जो एक विनम्र और दीन चरवाहे थे। उन्होंने अपने को एक धूल समझा जिस पर ईश्वर ने लिखने की कृपा की। यही कारण है कि वे कह सकते थे, प्रभु ने जोर देकर कहा है विनम्र बनो। यदि तूने बड़े बड़े काम भी किए हों तो भी कहो हम तो अयोग्य दास हैं। अपनी मुस्कान से संत पापा जॉन पॉल प्रथम ने प्रभु की अच्छाई को प्रकट किया। एक प्रसन्नचित शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कलीसिया कितनी खूबसूरत लगती है, जो द्वार कभी बंद नहीं करते, हृदय कभी कठोर नहीं बनाते, कभी शिकायत नहीं करते, कभी गुस्सा या अधीर नहीं होती, न ही अतीत के लिए कभी दुख प्रकट करती। संत पापा ने कहा, आइए हम हमारे इस पिता और भाई की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें, उनसे आत्मा की मुस्कान के लिए आग्रह करें। आइए हम उनके ही शब्दों से प्रार्थना करें।
Signore, prendemi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu me desideri.
प्रभु, मैं जैसा हूँ वैसा ही ग्रहण कीजिए, मेरी कमजोरी मेरी त्रुटियों के साथ, लेकिन मुझे वैसा ही बनाइए जैसा आप चाहते हैं।
मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो, जब जब मैं पुकारू तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो, मेरी आवाज में तुम हो, मेरी आराधना में हो, जब जब मैं पुकारू तुम्हें, मेरी सांसों में यीशु तुम हो।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज 5 सितंबर दान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2012 को इस बात की पुष्टि के लिए की गई थी कि कैसे दान विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के साथ साथ एकजुटता और आपसी समझ के बीच संवाद को बढ़ावा देने में योगदान दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुनी गई तारीख 5 सितंबर 1997 में कलकत्ता की संत मदर तेरेसा की मृत्यु की वर्षगांठ और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार की याद दिलाती है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों एवं नागर समाज को इसे मनाने के लिए आमंत्रित करता है और शिक्षा के प्रचार एवं जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों के माध्यम से दान और दान के कृत्यों को प्रोत्साहित करता है। कलीसिया आज कलकत्ता की संत मदर तेरेसा का पर्व दिवस मनाती है और उनकी 25वीं पुण्यतिथि की याद में संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर संत मदर तेरेसा की तरह पीड़ितों और गरीब लोगों के बीच खुशी और आशा के अवसर को खोलने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, मदर तेरेसा को यह कहना अच्छा लगता था, शायद मैं उनकी भाषा नहीं बोलती लेकिन मैं मुस्कुरा सकती हूँ। आइए हम उसकी मुस्कान को अपने दिलों में ले जाएं और इसे उन लोगों को दें जिनसे हम अपनी यात्रा के दौरान मिलते हैं, खासकर उन लोगों को जो पीड़ित हैं। इस तरह हम खुशी और आशा के अवसर खोलेंगे। संत पापा ने दान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सभी लोगों को एक छोटी राशि ही सही प्यार से देने हेतु प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, अगर एक छोटी सी राशि भी प्यार से बांटा जाए तो कभी खत्म नहीं होती। हमारी भिक्षा चाहे वह छोटी हो या बड़ी, जब उसे खुशी और सादगी के साथ अर्पित किया जाता है तो जीवन और खुशी का स्रोत बन जाता है। भारत के परिवेश में 5 सितंबर की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि इस दिन जहां हम आजाद भारत के दूसरे महामहिम राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, साथ ही इसी दिन विश्व के तमाम देशों के साथ मिलकर दान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी मनाते हैं। आज के दिन संत मदर तेरेसा की पुण्यतिथि के रूप में उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। इस अवसर पर हर तरह के उदार और मानवीय सहयोग पर कार्य किया जाता है। उधर रिमझिम हल्की बारिश में संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 4 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में संत पापा जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा समारोह की अध्यक्षता की। धर्माध्यक्ष रेनाटो मोरांगोनी ने ईश सेवक जॉन पॉल प्रथम के धन्य घोषणा संस्कार की धर्म विधि का अनुष्ठान करने हेतु संत पापा फ्रांसिस से आग्रह किया। पोस्टुलेटर कार्डिनल बेनियामिनो स्टेल्ला ने इस सेवक जॉन पॉल प्रथम की जीवनी पढ़ी। हमारे प्रेरितिक अधिकार के साथ हम यह अनुदान देते हैं कि इस सेवक पोप जॉन पॉल प्रथम अब से धन्य कहलाते हैं। यह कहते हुए संत पापा फ्रांसिस ने अल्बिनो लुसियानी को वेदी का सम्मान दिया। अब से हर साल 26 अगस्त को उस दिन की याद में मनाया जाएगा जब वे 1978 में संत पेत्रुस के 263वें उत्तराधिकारी चुने गए थे। संत पापा फ्रांसिस की घोषणा के बाद अलेलुया गीत के साथ महागिरजाघर के केंद्रीय लोजिया में स्थित धन्य पापा जॉन पॉल प्रथम की तस्वीर का अनावरण किया गया। चीनी कलाकार यांग जियांग द्वारा चित्रित सफेद कैसक में संत पापा जॉन पॉल प्रथम की विशिष्ट मुस्कान पूरे प्रांगण को कोमलता से गले लगाती हुई दिखाई पड़ी। पवित्र मिसा समारोह के प्रधान याजक संत प्रकरण के लिए बने धर्म संघ के प्रीफेक्ट कार्डिनल मार्सेलो सेमेरारो थे। उनके साथ प्रांगण में कार्डिनलों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और डीकनों सहित 500 से अधिक सहयाजक और उपयाजक थे। प्रांगण में करीब 25,000 विश्वासियों ने पवित्र मिसा समारोह में भाग लिया। संत पापा फ्रांसिस ने पवित्र मिसा के दौरान प्रवचन दिया। मिसा के अंत में संत पापा ने देश विदेश से समारोह में भाग लेने आए कार्डिनलों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और लोक धर्मियों को धन्यवाद दिया। संत पापा ने समारोह में उपस्थित इटली के राष्ट्रपति और मोनाको के प्रधानमंत्री को अपना आभार प्रकट किया। मिसा के अंत में और देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया में और यूक्रेन में शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, अब हम कुंवारी मरियम से प्रार्थना करते हैं ताकि वह पूरी दुनिया में विशेषकर पीड़ित यूक्रेन शांति का उपहार प्राप्त कर सके। वह प्रभु की पहली और आदर्श शिष्य हमें धन्य जॉन पॉल प्रथम के जीवन के उदाहरण और पवित्रता का पालन करने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और विश्वासियों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया। मिसा के समाप्त होने तक आकाश में धूप निकल आया था। संत पापा फ्रांसिस ने पापा मोबाइल में बैठकर संत पेत्रुस प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों का अभिवादन किया, कुछ बच्चों को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। उधर संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को जारी एक डिक्री के साथ रोट्स और माल्टा की सेंट जॉन ऑफ जेरूसलेम के सॉवरेन मिलिट्री हॉस्पिटलर ऑर्डर के नवीनीकरण में अगला कदम उठाया है। डिक्री नए संवैधानिक चार्टर और संस्था के संबंधित मिलिटेंट्स कोड की स्थापना करती है जो तुरंत प्रभावी होता है। उच्च कार्यालयों और संस्था को नियंत्रित करने वाली वर्तमान संप्रभु परिषद का विघटन। डिक्री में एक अनंतरिम संप्रभु परिषद का भी नाम है। डिक्री 25 जनवरी 2023 संत पौलुस के मन परिवर्तन पर्व के दिन असाधारण महासभा का भी आह्वान करता है। संत पापा ने डिक्री में इस बात पर प्रकाश डाला है कि संस्था ने हमेशा परम धर्म पीठ से विशेष सुरक्षा प्राप्त की है। संत पापा ने इस बात को भी इंगित किया कि सदियों से विभिन्न परमाध्यक्षों ने संस्था के पहचान की पुष्टि करने, संचालन को बनाए रखने, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभुता के अपने अधिकारों सहित आदेश के अस्तित्व और विकास की गारंटी देने एवं संकटों को दूर करने में मदद करने के लिए काम किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।